नमस्कार, आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो दिखाते हैं कि कैसे आजकल के डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम वो अक्सर हमारी एक बहुत बुनियादी भावना भरोसे का फायदा उठाते हैं।
हाँ बिल्कुल,
हम देखेंगे कि कैसे ये धोखेबाज चालाकी से पहले विश्वास जीतते हैं और फिर लोगों को ठगते हैं, और हाँ इससे बचने के कुछ जरूरी तरीकों पर भी बात करेंगे।
बिल्कुल सही, और ये समझना जरूरी है कि जैसे जैसे तकनीक बदल रही है धोखेबाजी के तरीके भी वो विकसित हो रहे हैं।
हाँ,
लेकिन कई बार उनकी जड़ें बहुत ही साधारण सी मनोवैज्ञानिक तरकीबों में होती हैं। ये स्रोत हमें कुछ सच में चौंकाने वाले उदाहरण दिखाते हैं।
एक किस्सा तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, लिंक्डइन पर किसी को मैसेज आया कि भाई किसी ने शेयर बाजार को क्रैक कर लिया है।
अच्छा, लिंक्डइन पर?
हाँ, और वो बता सकता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन सा नीचे। अब लिंक्डइन जैसी प्रोफेशनल जगह पर ऐसा दावा कौन यकीन करेगा भला?
वही तो, शुरू में तो उस व्यक्ति ने भी यकीन नहीं किया होगा जाहिर है, पर स्कैमर ने बड़ी चालाकी दिखाई।
क्या किया उसने?
उसने लगातार 2-3 दिन उसे सही भविष्यवाणी करके दिखाई। कभी कहा ये शेयर बढ़ेगा और वो बढ़ गया, कभी कहा वो गिरेगा और वो गिर गया।
अरे,
अब आप सोचिए 2-3 बार लगातार सही होने पर वो पीड़ित सोचने लगता है कि भाई जरूर कुछ बात है ना? शक भरोसे में बदलने लगता है।
हाँ, उसे लगता होगा कि कोई अंदरूनी खबर है शायद, पर असलियत तो कुछ और निकली।
हाँ, असलियत तो बड़ी दिलचस्प है, ये कोई भविष्यवाणी थी ही नहीं, ये तो सिर्फ संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी का खेल था।
प्रोबेबिलिटी का खेल कैसे?
स्कैमर ने क्या किया, उसने हजारों शायद लाखों लोगों को मैसेज भेजा, आधों को कहा कि शेयर एक्स बढ़ेगा और बाकी आधों को कहा कि शेयर एक्स गिरेगा।
अच्छा,
अब जाहिर है आधे लोगों के लिए तो बात सच निकलेगी ही, जिनके लिए सच निकली अगली बार उन्हें फिर 2 ग्रुप में बांटा, आधों को शेयर वाय बढ़ने की टिप दी, आधों को गिरने की।
समझ गई, तो ये सिलसिला चलता रहा।
बिल्कुल,
हर बार आधे लोग छंटते गए और अंत में कुछ ऐसे लोग बच गए जिनके लिए हर बार हर भविष्यवाणी सही साबित हुई,
और फिर उन बेचारों ने पूरा भरोसा करके पैसा लगा दिया होगा।
हाँ बिल्कुल, और स्कैमर गायब।
ये दिखाता है कि कैसे बिना किसी जटिल तकनीक के सिर्फ संख्याओं और मनोविज्ञान के खेल से करोड़ों का फ्रॉड हो सकता है।
भरोसा इस तरह जीता जा सकता है,
दिमाग चकराने वाला तरीका है सच में।
ये तो हुआ लालच के जरिए भरोसा जीतना, लेकिन एक और चीज जो बहुत चिंता बढ़ा रही है वो है आवाज की क्लोनिंग AI की मदद से, है ना?
हाँ, और ये बेहद गंभीर बात है। अब तो बस कुछ सेकंड की आपकी आवाज रिकॉर्डिंग से ही किसी भी की मिलती जुलती आवाज बनाना संभव हो गया है।
कुछ सेकंड से?
हाँ, और स्कैमर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं फर्जी इमरजेंसी कॉल करने में। सोचिए आपको कॉल आता है, आवाज बिल्कुल आपके बेटे या बेटी जैसी है।
हे भगवान,
और वो कह रहे हैं कि मैं मुसीबत में हूं, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, जल्दी से पैसे भेजो। उस घबराहट में इंसान सोच नहीं पाता।
लेकिन आवाज में थोड़ा बहुत फर्क तो होता होगा ना, लोग पहचान नहीं पाते।
देखिए, एक तो घबराहट होती है, दूसरा ये लोग कॉल स्पूफिंग भी इस्तेमाल करते हैं।
कॉल स्पूफिंग
मतलब?
मतलब
कॉल करने वाले का नंबर भी आपके बेटे या बेटी का ही दिखेगा फोन पर, तो शक की गुंजाइश और कम हो जाती है।
बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है, मतलब रिश्तों का भरोसा भी अब सुरक्षित नहीं।
बिल्कुल, इसलिए स्रोत ये भी कहते हैं कि अब सिर्फ मजबूत पासवर्ड बना लेना ही काफी नहीं है, ये सोचना कि मेरा पासवर्ड बहुत मुश्किल है, कोई पता नहीं कर सकता, ये एक मिथक है।
मिथक क्यों? पासवर्ड तो जरूरी है ना?
जरूरी है, पर अकेला काफी नहीं, क्योंकि डेटा लीक होते रहते हैं, पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, फिशिंग हमले इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता।
तो फिर क्या करें, उपाय क्या है?
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA, जैसे फोन पर OTP आता है, या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन या फेस रिकॉग्निशन, ये सुरक्षा की एक और परत है।
अच्छा, मतलब पासवर्ड के साथ एक और चीज।
हाँ, ये सिर्फ ये नहीं जांचता कि आपको क्या पता है पासवर्ड, बल्कि ये भी पक्का करता है कि आप ही हैं, आपके पास फोन है या आपकी उंगली है। भविष्य में तो शायद पासवर्ड लेस सिस्टम आम हो जाए, पर अभी के लिए MFA बहुत जरूरी है।
ये तो हुई अकाउंट सुरक्षा की बात। एक और उपयोगी जानकारी मिली है स्रोतों से, हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड से कितने फोन नंबर यानी सिम कार्ड जुड़े हुए हैं।
हाँ, ये बहुत काम की चीज है। सरकार का एक पोर्टल है tafcop.sancharsathi.gov.in, संचार साथी पोर्टल, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं।
और अगर कोई ऐसा नंबर दिखे जो हमारा नहीं है
तो आप उसे वहीं से रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक करवा सकते हैं। ये देखना जरूरी है कि कहीं आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कई बार लोग दूसरों के नाम पर सिम लेकर अपराध करते हैं।
सही कहा, ये जानना जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई आधिकारिक चीजें, पर हम खुद भी तो कितनी जानकारी ऑनलाइन डाल देते हैं ना।
हाँ, वो एक और बड़ा खतरा है।
पार्टी की तस्वीरें, कहाँ घूमने गए, नई गाड़ी ली तो उसका नंबर प्लेट भी दिखा दिया, ये सब कितना जोखिम भरा है।
इस स्कैमर्स के लिए मतलब जैसे सोने की खान है, उन्हें आपकी जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स मिल जाती हैं। इन डिटेल्स से वो क्या करते हैं?
क्या करते हैं?
वो भरोसेमंद लगने वाली कहानियां बनाते हैं। मान लीजिए आपने अपनी बिल्ली की तस्वीर डाली, स्कैमर आपको किसी पेट लवर ग्रुप का सदस्य बनकर अप्रोच कर सकता है, भरोसा जीत सकता है और फिर शायद कोई फर्जी मदद मांग ले, या फिर
ब्लैकमेल भी कर सकते हैं शायद, लोकेशन वगैरह पता हो तो।
बिल्कुल, इन छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर वो आपकी पूरी प्रोफाइल बना लेते हैं, आपकी आदतें, आपके दोस्त, आपकी पसंद नापसंद, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं आपको निशाना बनाने के लिए। अपनी पूरी जिंदगी ऑनलाइन दिखाना बहुत जोखिम भरा है।
तो मतलब बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि भरोसा, जो हमारे रिश्तों की, समाज की नींव है, उसी को डिजिटल दुनिया में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
चाहे वो शेयर बाजार वाला झांसा हो या फिर किसी अपने की आवाज में वो फर्जी इमरजेंसी कॉल।
और एक बार ये जानकारी ऑनलाइन चली गई तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन है ना, खासकर अगर वो डार्क वेब जैसी जगहों पर पहुंच जाए।
हाँ, ये बहुत मुश्किल है, उसे पूरी तरह से मिटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी डिजिटल पहचान और सुरक्षा को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।
बिल्कुल,
तकनीक तो बदलती रहेगी और शायद और तेजी से बदलेगी, ऐसे में सतर्क रहना, जागरूक रहना और इन तरकीबों को समझना ही सबसे बड़ा बचाव है। और हमें ये भी सोचना होगा कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जाएगी, हम इस भरोसे को, इस विश्वास को कैसे बनाए रखेंगे और कैसे सुरक्षित रखेंगे।